नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। अन्ना वीनर की अनकैनी वैली वर्ष 2020 में प्रकाशित एक संस्मरण है, जो न्यूयॉर्क के कम वेतन वाले प्रकाशन जगत से सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप संस्कृति तक लेखिका की यात्रा दर्ज करता है। 25 वर्ष की उम्र में बेहतर आय, पेशेवर स्थिरता और नए सामाजिक परिवेश की तलाश उन्हें तकनीक उद्योग की ओर ले जाती है। वहां वे ई बुक, डेटा विश्लेषण और सॉफ्टवेयर अवसंरचना से जुड़ी कंपनियों में काम करती हैं। पुस्तक किसी उद्योग इतिहास या कंपनी जांच की तरह नहीं, बल्कि भीतर से देखे गए अनुभवों का साहित्यिक विवरण है। विनर कंपनियों के नाम प्रायः नहीं बताती, बल्कि उनके उत्पादों, प्रतिष्ठा और कार्य संस्कृति के संकेतों से वातावरण रचती हैं। इसका उद्देश्य केवल सिलिकॉन वैली की आलोचना करना नहीं है, यह दिखाती है कि आदर्शवाद, भारी निवेश, असाधारण वेतन और बदलाव के वादे किस तरह कर्मचारियों की असुरक्षा, लैंगिक असमानता और सार्वजनिक जिम्मेदारी से दूरी के साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। निजी महत्वाकांक्षा और संस्थागत शक्ति के बीच का यही तनाव संस्मरण का केंद्र है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रकाशन की अस्थिरता से स्टार्टअप अर्थव्यवस्था की ओर पलायन। पुस्तक की शुरुआत तकनीक उद्योग के आकर्षण को समझने से होती है। विनर का प्रकाशन जगत छोड़ना केवल व्यक्तिगत करियर परिवर्तन नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों पर टिप्पणी है। न्यूयॉर्क का साहित्यिक और प्रकाशन परिवेश सांस्कृतिक प्रतिष्ठा देता था, पर कम वेतन, सीमित अवसर और लगातार अस्थिरता भी देता था। इसके विपरीत सिलिकॉन वैली खुद को तेज विकास, ऊंचे वेतन और भविष्य निर्माण की जगह के रूप में प्रस्तुत करती थी। यह अंतर विशेष रूप से उन युवा शिक्षित कर्मचारियों को खींचता है जिनकी रुचियां मानविकी या रचनात्मक क्षेत्रों में थीं, लेकिन जिनके लिए पारंपरिक पेशों में वित्तीय सुरक्षा कमजोर थी। विनर इस आकर्षण को भोलेपन के रूप में खारिज नहीं करती। स्थिर आय और सम्मानजनक जीवन की इच्छा व्यावहारिक है, लेकिन संस्मरण यह प्रश्न उठाता है कि जब समाज रचनात्मक, देखभाल संबंधी और नागरिक योगदान वाले कार्यों को कम मूल्य देता है, तब प्रतिभा किस दिशा में जाती है। स्टार्टअप का वेतन इसलिए केवल निजी लाभ नहीं, श्रम के सामाजिक मूल्यांकन का संकेत बन जाता है। पुस्तक बताती है कि तकनीक क्षेत्र की शक्ति का एक स्रोत उसका उत्पाद नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों की आर्थिक विफलताओं से पैदा हुआ उसका आकर्षण भी है। दूसरा, बेनाम कंपनियां और तकनीकी भाषा के पीछे छिपी सत्ता। विनर संस्मरण में उन कंपनियों के सीधे नाम लेने से बचती हैं जहां उन्होंने काम किया या जिनका प्रभावी उल्लेख आता है। यह शैली कानूनी अथवा व्यक्तिगत सावधानी भर नहीं है। इससे पाठक का ध्यान किसी एक प्रसिद्ध ब्रांड के सनसनीखेज विवरण से हटकर उद्योग के दोहराए जाने वाले ढांचों पर जाता है। कंपनियां अपने व्यापार मॉडल, कार्यालयी संकेतों, निवेशकों की अपेक्षाओं और सार्वजनिक छवि से पहचानी जाती है। परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि समस्या किसी अकेली संस्था की विचित्रता नहीं, बल्कि व्यापक स्टार्टअप संस्कृति की है। इस संस्कृति में भाषा भी सत्ता का उपकरण बनती है। बदलाव, समुदाय, घर्षण हटाना, विस्तार और व्यवधान जैसे आकर्षक शब्द अक्सर उस वास्तविक प्रश्न को ढक देते हैं कि कंपनी किसकी समस्या हल कर रही है, किससे लाभ कमा रही है और उसके सामाजिक परिणाम कौन भुगतेगा। विनर की वर्णन शैली इस अंतर को पकड़ती है, जहां कार्यालय का उत्साह और उत्पाद का सार्वजनिक दावा बहुत चमकदार है, पर कर्मचारियों तथा उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेही अस्पष्ट है। बेनामपन पाठक को पहचान की पहेली सुलझाने के बजाय उस परिचित माहौल की नैतिक संरचना देखने के लिए बाध्य करता है। यह संस्मरण को व्यक्ति विशेष के खुलासे से अधिक तकनीकी सत्ता के सामान्य व्यवहार का अध्ययन बनाता है। तीसरा, मेरिटोक्रेसी का दावा और संरचनात्मक लैंगिक असमानता। अनकैनी वैली का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह तकनीक कंपनियों की समतल संरचना और मेरिटोक्रेसी की छवि को अनुभव के आधार पर परखती है। उद्योग अपने को पुराने पदानुक्रमों से मुक्त, प्रतिभा आधारित और निष्पक्ष बताता है। परवीनर दिखाती हैं कि नियमों की अनौपचारिकता और वेतन वार्ता को व्यक्तिगत बनाने वाली नीतियां असमानताओं को कम करने के बजाय बढ़ा सकती हैं। यदि वेतन मांगने, अपने काम का प्रचार करने और वरिष्ठों से सहज निकटता बनाने को योग्यता माना जाए, तो पहले से सामाजिक लाभ रखने वाले लोगों को बढ़त मिलती है। पुस्तक में महिलाओं के काम की व्याख्या को लेकर तीखा अंतर उभरता है। पुरुष सहकर्मी का योगदान रणनीति समझा जा सकता है, जबकि महिला का समान प्रकार का संबंध परक या समन्वयकारी श्रम प्रेम, सहयोग या स्वाभाविक देखभाल के रूप में कम आका जा सकता है। यह अंतरपद, वेतन और प्रभाव तीनों पर असर डालता है। विनर मेरिटोक्रेसी शब्द के इतिहास की विडंबना भी रेखांकित करती हैं, क्योंकि इसे मूलतः सामाजिक व्यंग्य के रूप में गढ़ा गया था। पुस्तक का निष्कर्ष यह नहीं कि व्यक्तिगत क्षमता अर्थहीन है, बल्कि यह है कि क्षमता का मूल्यांकन हमेशा संस्थागत नियमों, बातचीत की शक्ति और सांस्कृतिक धारणाओं से प्रभावित होता है। इसलिए विविधता की घोषणा पर्याप्त नहीं, निर्णय प्रक्रियाओं की जांच आवश्यक है। चौथा, विकास के उत्साह और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बीच नैतिक दूरी। सिलिकॉन वैली की संस्कृति में विकास को अक्सर अपने आप में नैतिक उपलब्धि की तरह देखा जाता है। अधिक उपयोगकर्ता, अधिक निवेश और तेज विस्तार सफलता के प्रमुख संकेत बन जाते हैं। वीनर के अनुभव इस सोच की सीमा दिखाते हैं। किसी सेवा का तेजी से फैलना यह सिद्ध नहीं करता कि वह सामाजिक रूप से उपयोगी, सुरक्षित या न्यायपूर्ण भी है। निवेश आधारित कंपनियों में भविष्य की विशाल संभावना का अनुमान वर्तमान की कमजोरियों को ढक सकता है। कर्मचारी भी इस वातावरण में बड़े मिशन, आकर्षक सुविधाओं और निजी लाभ के मिश्रण से जुड़ते हैं, जबकि उत्पादों के व्यापक प्रभाव पर चर्चा पीछे रह सकती है। संस्मरण विशेष रूप से उस भावनात्मक दूरी को पकड़ता है जिसमें लोग दुनिया बदलने की भाषा बोलते हैं, लेकिन जिन समुदायों, श्रमिकों या नागरिक संस्थाओं पर तकनीक का असर पड़ता है, वे कार्यालय बातचीत में अनुपस्थित रहते हैं। यह आलोचना तकनीकी नवाचार के विरुद्ध नहीं है, इसका आग्रह है कि नवाचार को उसके वितरणात्मक प्रभावों के साथ परखा जाए। कौन लाभ पाता है, किसका काम बदलता है, किसकी निजता या स्वायत्तता प्रभावित होती है और जोखिम कौन उठाता है। वीनर का दृष्टिकोण बताता है कि नैतिकता बाद में जोड़ा जाने वाला विभाग नहीं हो सकती, उसे उत्पाद, निवेश और विस्तार के निर्णयों के आरंभिक चरण में शामिल होना चाहिए। अंत में, कर्मचारी चेतना, संगठन की संभावना और अधूरा राजनीतिक जागरण। पुस्तक के उत्तरार्ध में कर्मचारियों के बीच अधिकार, प्रतिनिधित्व और संगठन की चर्चा उभरती है। यह महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि स्टार्टअप संस्कृति अक्सर कर्मचारियों को श्रमिक नहीं, विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिभा या कंपनी मिशन के साझेदार के रूप में देखना सिखाती है। ऊंचे वेतन, कार्यालय सुविधाएं और व्यक्तिगत उन्नति की संभावना सामूहिक हितों की भाषा को कमजोर कर सकती हैं। विनर इस वातावरण में पैदा हो रही नई राजनीतिक चेतना को नोट करती हैं, जहां कुछ तकनीकी कर्मचारी अपने को व्यापक श्रम जगत से जोड़कर देखने लगते हैं। यूनियन, श्रमिक अधिकार और सार्वभौमिक बुनियादी आय जैसी चर्चाएं इस असंतोष का संकेत हैं। फिर भी संस्मरण इन्हें तैयार समाधान के रूप में पेश नहीं करता। बातचीत और ठोस संगठन के बीच दूरी बनी रहती है तथा विशेषाधिकार प्राप्त कर्मचारियों के लिए जोखिम उठाना कठिन हो सकता है। यही अधूरापन पुस्तक को विश्वसनीय बनाता है। वह न तो तकनीक कर्मचारियों को केवल दोषी ठहराती है, न उन्हें स्वतः परिवर्तनकारी नायक बनाती है। इसके बजाय वह दिखाती है कि व्यक्तिगत असुविधा को सामूहिक राजनीतिक समझ में बदलने के लिए साझा हितों की पहचान, संस्थागत समर्थन और वास्तविक कार्रवाई चाहिए। पाठक के लिए मुख्य बात यह है कि कार्यस्थल की संस्कृति निजी अनुभव मात्र नहीं होती, वह वेतन, अधिकार, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रश्नों से जुड़ी होती है। निष्कर्ष में, अनकैनी वैली उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो तकनीक उद्योग में काम करते हैं, वहां प्रवेश करने की सोच रहे हैं या डिजिटल कंपनियों के सामाजिक प्रभाव को भीतर के अनुभवों के माध्यम से समझना चाहते हैं। यह संस्मरण व्यवसायिक सफलता की विधि या तकनीकी उत्पादों का परिचय नहीं देता। इसकी उपयोगिता उन धारणाओं को पहचानने में है जो कार्यस्थल को सामान्य और स्वाभाविक दिखाती हैं, जैसे मेरिटोक्रेसी, अनिवार्य विकास, अनौपचारिक संस्कृति और व्यक्तिगत लाभ को सामूहिक प्रगति मान लेना। पाठक इससे अपने कार्यस्थल के वेतन ढांचे, निर्णय प्रक्रिया, लैंगिक व्यवहार और उत्पाद के सार्वजनिक प्रभाव पर अधिक सटीक प्रश्न पूछना सीख सकता है। प्रकाशन, पत्रकारिता, रचनात्मक उद्योगों और आधुनिक श्रम बाजार में रुचि रखने वालों को भी इसमें आर्थिक असुरक्षा से करियर विकल्पों के बदलने की समझ मिलेगी। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता इसका निकट आत्मालोचनात्मक दृष्टिकोण है। वीनर बाहर खड़ी होकर सिलिकॉन वैली पर फैसला नहीं सुनाती, वे उसके आकर्षण में प्रवेश करती हैं, उससे लाभ भी पाती हैं और धीरे धीरे उसकी विरोधाभासी संरचना को देखती हैं। कंपनियों को बेनाम रखने की शैली भी ध्यान को व्यक्तियों से हटाकर व्यवस्था पर केंद्रित करती है। साहित्यिक अवलोकन, व्यंग्यात्मक संवेदना और श्रम संबंधी प्रश्नों का यह संयोजन इसे तकनीक आलोचना के साथ साथ एक पीढ़ी के पेशेवर मोहभंग का प्रभावी दस्तावेज बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं आना वीनर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।